धर्म धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के दो युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
सद्गुरु बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, उनके वरदानों में पलने वाले आप सभी मास्टर सद्गुरुओं का आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब देश विदेश में जहाँ कहीं भी हैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, विश्व कल्याण की सेवा में व्यस्त होंगे और प्यारे सद्गुरु बाबा की याद में मस्त होंगे, है ना? संसार का हर एक व्यक्ति आज प्यारा बनने की कोशिश करता है। अच्छा प्रयास है, अच्छी कोशिश है, लेकिन इस प्रयास में कई बार वो उलझ जाता है। सबका प्यारा तो कोई बन ही नहीं पाता। बाबा ने एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक सिद्धांत हम सबको दिया है जो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है कि न्यारे बनोगे तो तुम सबके प्यारे बनोगे। लोग प्यारा बनने के लिए अलग अलग विधियां जरूर बताते हैं, पॉजिटिव रहो, क्षमा करो, मिलजुल के रहो आदि आदि इत्यादि, और बहुत अच्छी धारणाएं हैं। लेकिन एक गहन जो बात है जो बाबा ने हमें बताई कि न्यारे हो जाओ तो सबके प्यारे बनोगे। संसार में एक ही है जो सबका प्यारा है और वो है हमारे प्यारे बाबा। कारण, वो न्यारे रहते हैं। 1936 से लेकर के शिव बाबा ने और 1969 से लेकर दोनों ने, बाप दादा ने, हम सबको यही सिखाया, न्यारे बनो, न्यारे रहोगे तो सबका प्यार मिलेगा। जैसे मैं ऊपर से अवतरित होता हूँ, आता हूँ, आधार लेता हूँ, कर्तव्य करता हूँ, चला जाता हूँ, वैसे ही तुम भी ऊपर से आओ, अवतार बनकर कार्य करो, वापस चले जाओ। तो जैसे बाप दादा को सभी प्यार करते हैं, वैसे आप भी सबके प्यारे बन जाओगे। और इसीलिए एक सुंदर सा महावाक्य बाबा का, न्यारा बनना और प्यारा बनना यही बाप समान बनना है, जो हमारे प्रोजेक्ट का एक सुंदर हिस्सा है। तो इसी सुंदर विषय पर, गहन विषय पर, सूक्ष्म विषय पर, सुंदर विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। आइए पहले स्वागत करते हैं हमारे प्रोजेक्ट गाइड, हमारे मार्गदर्शक, वरिष्ठ भ्राता आदरणीय सूर्य भाई जी का। पश्चात आपके प्रश्न जो हमारे पास आए हैं उनकी ओर चलेंगे। पहले मैं चाहूँगा भ्राता जी इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत अभिनंदन भ्राता जी आपका।
थैंक यू। जैसा आपने कहा, न्यारापन और प्यारापन दोनों बढ़ जाएंगे तो हम बाप समान बनने की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। थोड़ा सा गहराई से विचार करें क्यों जरूरी है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आत्मा ने जो यात्रा की है, अब आकर आत्मा इतने निर्बल और प्यासी जैसी बन गई है कि वो दूसरों की ओर देखती है कहीं से उसे प्यार मिले। तो एक्सपेक्टेशंस ने, आत्मा की कमजोरी ने, मन के विभिन्न विचारों ने उसकी एक टेंडेंसी जैसी बना दी, यानी उसमें एक संस्कार पैदा कर दिया जो आप बहुत मनुष्यों में देखेंगे, जल्दी ही कहीं भी आसक्त हो जाना। वर्तमान काल में बच्चे मोबाइल पर आसक्त हो गए हैं, जो जो उसमें भिन्न भिन्न चीजें हैं। दो मनुष्य साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आसक्ति हो जाती है, मोह ममता हो जाती है। वस्तु जो हमारे पास है उसके प्रति भी हमारे चित्त में आसक्तियां हो जाती हैं। सेवाएं जो हमें मिलती हैं उसमें भी हम आसक्त रहते हैं। मेरापन इसका मुख्य कारण है। मनुष्य के पास जो अपने टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके गुण हैं, उसकी कार्य करने की विधियों में सफलता उसे मिलती है, अपनी सफलताओं में भी मनुष्य आसक्त हो जाता है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है, महिमा हो रही है हमारी, हम महिमा के योग्य हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं, जो महिमा के योग्य है उसकी महिमा होगी ही, जैसे भगवान की होती है। पर हम उस महिमा में आसक्त हो जाते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न एरियाज पर अगर हम दृष्टि डालें तो मनुष्य जहाँ भी संलग्न है वहाँ वो आसक्त है। इवन अपनी कुर्सी से, अपनी बेड से, अपने कमरे से, परिवारों में तो दूसरी बड़ी बात है, बच्चों से, पति पत्नी से, तो मनुष्य आसक्त होता है। और जब तक कहीं भी मनुष्य आसक्त है वो योगयुक्त नहीं हो सकता। इन आसक्तियों में उसकी सूक्ष्म शक्तियाँ भी नष्ट होती रहती हैं, ये अति सूक्ष्म बात है। इसलिए आत्मा की डिग्री दिनों दिन डाउन होगी, जबकि जाना है हमें 100 तक। इसलिए न्यारे होना बहुत आवश्यक है। ईश्वरीय महावाक्यों में मैंने बहुत शुरू में सुन लिया था, कई बच्चे दूसरों का प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे आप सुन रहे थे, मनुष्य भिन्न भिन्न विधियां अपनाता है, कहीं नज़दीक जाएगा, उनकी महिमा करेगा, चाकरी जैसी करेगा, आगे पीछे घूमेगा, उनकी महिमा करेगा। लेकिन बाबा ने कहा था, इससे तुम उनसे और ही दूर हो जाते हो। सिद्धांत यही है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में हमें न्यारा बनना है, लेकिन उसकी शुरुआत हम देह से न्यारे बनने से करेंगे। तो बहुत ही सूक्ष्म विषय है ये, और बाबा ने इस पर बहुत अच्छी अच्छी ब्रह्मा बाबा की अनुभव की बातें भी हमें अव्यक्त में सुनाई हैं, जो मेरे ख्यालों में हैं। मैंने उनको लाया अपने जीवन में, इसलिए मुझे वो याद भी रहती हैं। हम उनकी कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का बैलेंस कर लें तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, संसार हमारी ओर देखेगा, और हम मंजिल के शिखर पर एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। बाप समान बनकर बाप का स्वरूप अपने स्वरूप से सारे संसार को दिखाएंगे।
जी प्रातः जी, से पहले मैं प्रश्नों की ओर चलूं, आपने जो बात कही है उसी से एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि आपने कहा जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु है जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिस पद प्रतिष्ठा या कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, उससे आसक्त हो ही जाते हैं। तो जब ये एक नेचुरल सी हमारी प्रकृति बन गई है और लंबे समय का एक अभ्यास हो गया है, आदत हो गई है, संस्कार हो गया है, तो न्यारापन कितना सहज है फिर?
बिल्कुल सहज नहीं है, आपने ठीक कहा, क्योंकि हो सकता है 1000 साल की आदत हो किसी के अंदर, और है ही, और इसका बीज देहभान है। इसका बीज संसार की अप्राप्तियां हैं। सूक्ष्म गति से अगर हम देखेंगे, एक व्यक्ति बड़ा पद चाहता है, ठीक है, वो योग्य है तो उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अयोग्य होते भी बड़ा पद चाहते हैं, जैसे उनके अंदर एक भूख प्यास सी रहती है कि ये कुर्सी हमें मिल जाए, धन कमा लेंगे, नाम हो जाएगा, समाज में ये होगा, बच्चों का अच्छा रहेगा। तो इस आदत को छुड़ाना, इसी के लिए अध्यात्म की जरूरत है। संसार में तो इसके बारे में कोई न सोचता, उनका लक्ष्य तो छोड़ो वो तो है ही नहीं, पर इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भक्त, विद्वान, आचार्य, हमारे बड़े बड़े साधु संत, कुछ अच्छे जो साधु संत हैं, जो तपस्वी हैं, जो शिष्य भी नहीं बनाते, जो किसी स्थान पर भी ज्यादा वैभवों से नहीं रहते, नहीं तो वहां शक्ति हो जाएगी। एक सन्यासी को एक सुंदर सा मकान दे दो, कमरा अच्छा सा, बड़े सुख सुविधाएं हो, तपस्या अच्छी होती है, कोई झंझट नहीं, वो कहेगा यही ठीक है, बस गुफाओं में जाके क्या करेंगे,
ठंड लगेगी,
कंबल चाहिए, कपड़े कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, मुझे सारा समय उसमें ही बिताना पड़ेगा। तो संसार में तो इस बारे में कोई सोचता नहीं, लेकिन अध्यात्म का पथ, और वो पथ जो भगवान ने स्वयं परम सद्गुरु बनकर दर्शाया है हम सबको, और एक ऊंचा लक्ष्य दिया है, तुम्हें परफेक्ट होना है, या अगर मैं आजकल की दुनिया की भाषा में कहूं तो तुम्हें मुक्त होना है। शरीर छोड़ के मुक्त होने की बात पीछे, यही मुक्त होना है। अगर हम यहां मुक्त न हुए तो मृत्यु के बाद मुक्ति की कोई गारंटी नहीं मिलेगी, नहीं, हमें यही मुक्त होना है। तो इसके लिए आध्यात्मिक शक्तियां, राजयोग का पूर्ण अभ्यास, राजयोग अर्थात परमात्मा से हम परम सुख प्राप्त करने लगे, आत्मा परम आनंद में स्थित हो जाए, परम शांति मिल जाए, बहुत शक्तियां मिल जाए, परमात्म प्रेम मिल जाए। अब जब ये सब भरपूर हो जाएंगे तो कुछ पाना उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जमीन पे सो रहे वही परम सुख है, दाल रोटी खा रहे बस वही सब कुछ है, भोजन केवल उधर पूर्ति के लिए है।
जी, जी।
तो बिना अध्यात्म के इस पे तो चिंतन भी नहीं हो सकता और लक्ष्य भी नहीं हो सकता ये किसी का। लोग तो आगे बढ़ने को सर्वस्व मानते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए भी न्यारापन रहे, ताकि आगे बढ़ना भी हमें बांधने ना लगे। आसक्तियां मनुष्य को बांधती हैं।
जी, जी।
अब देखिए परिवारों में भी अगर आप ले लो तो माँ बाप बच्चे बंधे हुए ही तो है ना, अगर न्यारा प्यारापन हो तो जीवन का आनंद लेंगे।
जी जी, शायद यही कारण है मुझे लगता है व्रता जी कि जो सन्यासी थे वो सब कुछ छोड़ के चले जाते थे ताकि वो साधना में कोई खलल ना पड़े। अब बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है कि नहीं, कहीं गुफा कंदरा में नहीं जाना,
यहीं रहते हुए
यहीं रहते हुए करना है, तो उसे सहज कैसे करें, वही आज की चर्चा।
नहीं, मैं इसमें कुछ कह दूं आपका प्रश्न बढ़ने से पहले।
जी,
सन्यासी सब कुछ छोड़कर चले गए अनासक्त होने के लिए, और बाबा कहते छोड़ना कुछ नहीं है, कार भी रखनी है, बाइक पे भी घूमना है, पैसा भी रखना है और अनासक्त होना है। परिवार वालों को छोड़ के भागना कहीं नहीं, बच्चों की पालना करनी, उन्हें प्यार देना है, संबंध निभाने हैं, लेकिन होना है न्यारा। तो शायद सन्यास से भी 10 गुना बड़ा चैलेंज है।
जी जी,
इसलिए गहन साधनाओं की जरूरत
आवश्यकता है। जी जी, बाबा हमें शायद राजा जनक बनाना चाहते हैं कि रहो लेकिन जनक की तरह। प्रश्न है व्रत जी कि सारे दिन कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव तो आता ही है, यहाँ न्यारापन कैसे संभव हो?
बिल्कुल, कर्म का प्रभाव आएगा ही, और मनुष्य को एक नेचुरल सी थिंकिंग या संस्कार हो गया है, भाई मुझे ये करना, मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ये काम करने, तो ये यहीं से बंधन शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, उसका चिंतन शुरू हो जाता है, कुछ काम नहीं हुआ या अधूरा हुआ, उसका इफेक्ट मन पे रहता है। लेकिन यदि हम अपने कार्यों में कर्म क्षेत्र पर जाने से पहले कुछ सुंदर अभ्यास करके चलें और कुछ चीज़ों को अपने जीवन का अविनाशी अंग बना दें, कुछ विचारधाराओं को। जैसे किसी भी कर्म से पहले जो स्मृति हमारे अंदर होगी उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है, उसे 3 मिनट 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाना चाहिए, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, और बातें करें कि आज मुझे ये कार्य करना है, सब सरलता से हो जाएगा। मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ काम कर रही हैं, वो करण करावनहार है, मैं तो केवल निमित्त हूँ और जिम्मेदार वही है, और सहज भाव से मैं इस कार्य को कर लूँगा और आज मैं अपने हर कार्य को एन्जॉय करूँगी, एन्जॉय करूँगा। और बाबा को योग लगा कर फिर कर्म क्षेत्र पर जाएं, इस चीज़ को 2-4 बार दोहरा लें, बस कर्म का इफेक्ट कम होता नजर आने लगेगा। ये तो श्योर है कि एक दिन में ये काम नहीं होता
जी,
क्योंकि हजारों साल की कर्मों के प्रभाव में आने की जो हमारी स्थिति है बनी हुई है, इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर कोई 6 मास भी ऐसा अच्छा अभ्यास कर ले तो कर्म करते हुए कर्म से न्यारापन, जैसे परमात्म शक्तियाँ मेरे साथ लगी हुई हैं और कार्यों का जो परिणाम होगा उसके प्रभाव से भी न्यारापन, और जब हम कर्म करके वापिस आएंगे तो एन्जॉयमेंट लेकर घर वापिस आएंगे।
बहुत सुंदर आपने एक अभ्यास दिया रहता है जी कि उसका कर्म से के शुरुआत में यदि कुछ स्मृति हो तो एक अच्छा प्रभाव सारे कर्म क्षेत्र पे रहता ही रहता है। ब्रता जी, कुछ प्रैक्टिकल से प्रश्न हैं और एक साथ मैं ले रहा हूँ इनको। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो बाबा के ज्ञान में हैं, या फिर स्कूल जाने वाले भी बच्चे हैं, जॉब में अनेक साथी हैं जो ज्ञान में नहीं हैं, या लौकिक फ्रेंड का सर्कल है, तो ये सारे लोग दुनियावी बातें करते हैं, तो उनसे वहाँ पे हम न्यारे प्यारे कैसे बने? क्योंकि मिक्स होते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उनकी बातें तो बहुत ऊपर नीचे ही होती हैं, उनकी बातें भी हमें प्रभावित करती हैं, और मिक्स नहीं होते हैं तो फिर उनकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं, ज्ञान योग से या फिर ब्रह्मा कुमारी से वो दूर हो जाते हैं।
देखिए, ऐसा है कि भिन्न भिन्न तरह के बच्चे, किसी का बुरा संग किसी का अच्छा संग, सभी बुरे तो नहीं है, अच्छे भी हैं
जी।
कुछ बच्चे पढ़ाई की बातें करेंगे, क्वेश्चंस की बातें करेंगे, कोई टफ बात आ गई उसकी बातें करेंगे, तो दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो व्यर्थ में ज़्यादा रहते हैं, गंदी बातें करेंगे, निगेटिव बातें ज़्यादा करेंगे, कोई पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ों की बातें ज़्यादा करेंगे। इसमें मनुष्य ने अगर पहले से ही अपनी मनोस्थिति अच्छी बनाई होगी, मान लो एक स्टूडेंट ही है और वो अब कॉलेज में है या स्कूल में है, अब उसको ज्ञान योग में बहुत रुचि होगी, तो उस अगर वो सोमान के बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे तो उनके वाइब्रेशंस चारों ओर बहुत अच्छे फैलेंगे, और जब उनके वाइब्रेशंस फैलते होंगे तो उनके प्रति सभी का सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, सभी उनको ऊंची नज़र से देखेंगे। और ये जो सब बातें हैं ये आएंगी ही नहीं। मेरे पास कई बाबा के बच्चों का जो स्टूडेंट रहे अब बड़े हो गए अनुभव है, हमारे दिल्ली के डॉक्टर गुप्ता हैं, उनकी लड़की है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, कईयों को अच्छा लगेगा कईयों को नहीं, सुनाते थे कि शुरू से ही संबंधी भी और स्कूल कॉलेज के साथी भी सब कहते थे ये तो देवी है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती थी। मैंने ऐसे बहुत सारी कन्याएं देखी, सफ़ेद वस्त्र पहन के जाती हैं, ठीक है, लोगों ने शुरू में कमेंट्स किए, फिर छोड़ दिया कमेंट्स करना, उसकी स्थिति देखकर उनसे प्रभावित होने लगे, तो जो अच्छे बच्चे थे वो उनके साथ आने लगे, अच्छे विचार ग्रहण करने लगे, अच्छी बातें सुनने लगे, तो पूरी क्लास में एक अलग माहौल बन गया उनके प्रति भी और उनके द्वारा भी, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। बस बात यह है, अब एक स्टूडेंट है वो पहले उनके साथ रहा है बहुत ज़्यादा, अब घंटों वो गपशप कर रहे हैं, अब उसने ज्ञान योग ले लिया है, अब वो थोड़ा न्यारापन में रहता है, लेकिन अगर उसकी मनोस्थिति अच्छी होगी तो वो उन 10 पर भी अपना प्रभाव डाल देगा। लेकिन अगर वो अभी भी उनकी बातों में बहुत रुचि लेता है, अब घंटा बिताते हैं, वो घंटा बहुत बड़ा समय है, घंटे में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा डिटैच होके अपनी अच्छी स्थिति में रहेंगे तो ये सत्य है, हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अगर मान लो किसी कारणवश हमें वहाँ रहना भी पड़ा, आधा घंटा उनके बीच में रहना पड़ा और उनकी गपशप सुननी भी पड़ी, तो जैसे ही हम वहाँ से बाहर आएंगे वो सब खत्म हो जाए,
यदि स्थिति अच्छी है। जैसे आपने कहा कि ज़्यादा रहना पड़ता है, तो अगला प्रश्न वैसा ही था प्रताप जी कि परिवार में मेहमान आ गए, अब उनके साथ रहना ही है, बातें करनी हैं, उन्हें एंटरटेन भी करना है, तो हमारी सारी दिनचर्या अपसेट हो जाती है। अब यहाँ कैसे न्यारे प्यारे हों, और नहीं करेंगे तो वो नाराज भी होते
नहीं
हैं।
बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन,
या शादी में जाने वाली भी बात होती है तो भी वहाँ दो तीन दिन
नहीं करेंगे, ये तो बात ही नहीं, वो तो करना ही होगा
जी।
हम ऐसे टाइट या सूखे नहीं हो सकते कि कोई हमारे घर ना आए, या हम किसी के घर ना जाएं, या हम उनसे बातचीत ना करें, या मेल मिलाप हम ना रखें, प्यार ना दें, उनकी बातें ना सुने। कभी कई बार दूसरों की बातें ऐसी होती हैं जब वो सुनाएंगे हमें तो वो हल्के हो जाएंगे, या हमारे मुख से वो कुछ बहुत अच्छी बातें भी सुनना चाहते हैं। अगर हमारी स्थिति सचमुच बहुत अच्छी है, और मान लो आपके घर में आज 5 मेहमान आ गए, लेकिन आपने पक्का किया हुआ है कि भाई ये सब आत्माएं हैं और अब हमें स्नेह देना, इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, अब हमारा पार्ट है उन्हें प्यार देने का, उन्हें अपनापन देने का, उनसे बातें करने का, उनकी खातिरी करने का। अभी आप बहन हैं और आप 2-4 चीज़ें बना रही हैं उनके लिए, तो आप अपनी स्थिति को न छोड़ें, कुछ अच्छे अभ्यास करते हुए बनाएं, तो उन्हें प्यार भी दें, अपनापन भी दें। और मान लो आप ये सब कुछ भी थोड़ा कम कर पाए, लेकिन जैसे ही वो पार्ट पूरा हुआ, भाई मेहमान गए, आप फिर से अपनी अच्छी स्थिति में स्थित हो जाएं, तो उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और आप पुनः अपनी उसी स्थिति में रहेंगे। तो सबको आत्मा देखना, अपने अच्छे स्वमान का अभ्यास करना, बीच बीच में मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास करना, बीच बीच में बाबा मेरे साथ है यह अभ्यास कर लेना, ये सब भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवकुल की आत्माएं हैं, एक दिन इनको भी बाबा के पास आना है, ये सब भावनाएं हों
जी, जी।
तो एक्चुअली देर इज नो प्रॉब्लम।
बहुत सुंदर, ये सारी प्रैक्टिसेस होती रहें तो फिर न्यारा होना इजी होगा। ज़्यादातर मैंने ये देखा है प्रताप जी कि जब ऐसी कंडीशन में व्यक्ति होता है ना, तो उसे लगता है कि अरे ये क्या है, ये कब ठीक होगा, कब ये जाएंगे, कब हम ठीक से अमृत वेला करेंगे, बैठेंगे योग में, पुरुषार्थ करेंगे, तो ये चिंतन ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और बाबा भी कई बार कह देते हैं कि जो तुम्हें उल्टी सीधी बात सुनाता है वो तुम्हारा दुश्मन है। लगता है ये हमारी दुश्मन कहाँ से है।
इसमें थोड़ा सा हमें अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। वो बाबा क्यों कहते थे, किसे कहते थे, उसको लोग बहुत कम समझते हैं। वो तो सोचते हैं भगवान के मुख से जो निकल गया वो हमारे लिए है,
कि ये झरमुई झगमुई वाली बातें हो गई।
बात तो ठीक है, लेकिन पहले से ही अगर हम ये संकल्प कर लें कि लो जी आ गए मेहमान, अब टाइम वेस्ट होगा, अब तो गया सवर, पुरुषार्थ अपना खत्म हुआ, तो ये जो हमारे मन में द्वंद्व चलता रहेगा ये सब खेल बिगाड़ देगा। हमें इस संकल्प को खत्म करना है, हमें याद रखना है हम परिवारों में हैं, हमें सामाजिक रीति रिवाज निभाने ही पड़ते हैं, लोग हमारे घर में आएंगे, हम किसी के घर में भी जाएंगे, संबंध हैं, बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचने की बजाय कि आ गए मेहमान, अब टाइम वेस्ट होगा, अब सब कुछ मेरा खराब हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, ये ना सोचकर ये सोचें कि मैं ऐसी स्थिति में रहूंगी कि मेरे सुंदर वाइब्रेशन जिनको ऐसे मिलें कि ये याद करें कभी उनके घर गए थे, भाई उनका घर तो मंदिर है, अरे वो तो देवियां हैं। तो हम अपने संकल्पों को बदलेंगे, स्थिति बदल जाएगी।
जी जी जी, विचार बदलने से शायद संसार बदल जाएगा, जो आप हमेशा कहते हैं। प्रताप जी, एक यहीं से जुड़ी हुई एक बात है कि यदि मान लीजिए हम फैक्ट्री में हैं, हमारे अंडर में 10 15 20 100 50 वर्कर्स हैं, अब ये वर्कर्स गलती कर रहे हैं, घर में भी ऐसा होता है कि बच्चे गलती करते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें न्यारे होना चाहिए या फिर कुछ प्यारे बनने की
नहीं,
कोशिश?
न्यारेपन का यहाँ अर्थ ये नहीं कि अगर कोई गलती कर रहा है तो हम उसे करेक्ट ना करें, कहीं डांटना पड़े तो उसको ना डांटें, कहीं कोई कार्रवाई भी करनी पड़े, कोई बड़ा अधिकारी है, वो न करें, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक भाव हो, उन्हें सुधारने की शुभ भावना हो, और आप फैक्ट्री के मालिक हैं या जीएम हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब कुछ ठीक कराएंगे, लेकिन करा के आपकी मनोस्थिति न बिगड़ जाए। लोग क्या करते हैं, किसी को डांट आए
जी,
अब फिर ऑफिस में बैठ के पछता रहे, यार आज
तो मना किया है
ये तो आज पाप कर्म हो गया, फिर उसके पास जाएंगे कुछ कुछ करेंगे, ये नहीं। डांट आए, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, लास्ट में प्यार से दो शब्द भी उसे बोल दे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और अपने को फिर अपनी अच्छी स्थिति में रख लें तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। तो जहाँ हमें कार्य करना है और कराना है, जहाँ हमारी बहुत अच्छी जिम्मेदारियाँ हैं और हमें उन्हें पूर्ण कराना है, उसमें भी वास्तव में बहुत अच्छी बात तो ये है जो बाबा हमेशा सिखाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये, सभी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम ये अभ्यास करें मैं स्वराज अधिकारी हूँ, यानी हम अपने पर राज करने लगें, अपने मालिक बन जाएं, तो जिनके हम मालिक हैं ना स्थूल में, चाहे बड़े अधिकारी हैं या मालिक हैं, वो आपकी बात स्वतः ही मानने लगेंगे, उनके मन में इतना सम्मान हो जाएगा। सच तो ये है कि वो ये चाहेंगे कि हम अपने कार्य इतनी जिम्मेदारी से करें कि जो हमारे बड़े हैं, मालिक हैं, अधिकारी हैं, उन्हें सोचना ही ना पड़े। और एक अच्छा वर्कर ये हमेशा सोचता है कि मुझे कार्य इस तरह करना चाहिए, चाहे लक्ष्य ये भी हो कि भाई बड़े राजी होंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, प्रमोट होना तो हर व्यक्ति चाहता है और अच्छी बात है, लेकिन सब लोग जिम्मेदारी से कार्य करने लगेंगे, समस्याएं कम से कम आएंगी। मैंने तो ऐसा देखा और भगवान के महावाक्यों से ये सीखा कि मान लो आपके पास बड़ी फैक्ट्री है, उसमें मशीनें लगी हुई हैं और 10 इंजीनियर उनके लिए जिम्मेदार हैं मैकेनिकल, अगर उनकी मनोस्थिति अच्छी है, अगर उनके मन के वाइब्रेशंस अच्छे हैं, तो वो सभी मशीनें कभी ख़राब होंगी नहीं। वाइब्रेशंस का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त होता
मतलब
है,
मतलब वाइब्रेशंस मशीनों पर भी कार्य
मशीनों पर भी, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति पर वो इफेक्ट डालते हैं, मशीनरी पर भी। हमने गाड़ियों में देखा, हमारी मनोस्थिति अच्छी है इंजन खराब होगा नहीं, होगा तो मामूली हो गया, अब पुराना ही हो गया तो होगा हाँ, भी हाँ, हाँ। लेकिन तुरंत पकड़ में आ जाएगी, फॉल्ट ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर रहता है जी, मतलब एक अच्छी स्थिति की आवश्यकता है, स्वराज्य अधिकारी हैं तो ये सब कार्य सहज होते जाएंगे। एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न व्रता जी कि कभी सेंटर पर या कभी बड़े यज्ञ में बड़ी गलतियाँ होती हमें दिखती हैं, क्या हम न्यारे रहें इससे या उसके सुधार के लिए कोशिश करें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप यज्ञ रक्षक भी हो, संकल्प तो चलते हैं।
संकल्प तो चलते हैं और चलेंगे और चलने भी चाहिए, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं
जी,
हम यज्ञ रक्षक हैं, हम मालिक हैं, यज्ञ हमारा है। लेकिन जो निगेटिविटी हो रही है उसका असर हम पे ना आए, यह है न्यारापन। जो व्यर्थ है उस व्यर्थ से हमारी स्थिति न बिगड़े, यह है न्यारापन। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं, उसके बारे में हम सोचकर भी क्या करेंगे, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल है हमारे लिए करने का, वो हमें अवश्य करना चाहिए। और यज्ञ के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि किसी व्यक्ति को महत्व देने से पहले हमें भगवान के यज्ञ को महत्व देना चाहिए, उसमें हमें भी कुछ बलिदान करना पड़ रहा हो ना, यज्ञ के लिए, यज्ञ को सफल करने के लिए, यज्ञ को पावरफुल बनाने के लिए हमें भी कुछ बलिदान देना पड़ रहा हो, तो एक यज्ञ स्नेही आत्मा को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को वो भी कर देना चाहिए। यज्ञ फर्स्ट, भगवान का यज्ञ है, भले वो इसका खुद जिम्मेदार है, वो रक्षक है, जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन निमित्त उसने हमें बनाया है, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करनी चाहिए।
जी जी मतलब हमारी स्थिति अचल अडोल अच्छा रहे है और बाकी यज्ञ
स्थिति बिगाड़ ली तो हम न्यारे नहीं।
बिल्कुल, मतलब यज्ञ के कल्याण के लिए हम अपना प्रयास करें लेकिन स्थिति अप्रभावित हो और बाकी जो हो फिर हम बाबा को अर्पित करते।
इसीलिए ये थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि स्थिति बिगड़ती है लोगों की, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सब। लेकिन स्थिति को भी कायम रखें और कर्तव्य भी करें, यही एक सच्चे ज्ञानी और योगी की पहचान भी है।
जी जी जी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि भले हमारे हमें कुछ मिले ना मिले, हमारी स्थिति रहे ना रहे, लेकिन कम से कम यज्ञ में या फिर जो सेंटर में यदि कुछ ऊपर नीचे है, हमारे कारण यदि ठीक हो गया तो हम इसके लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे।
नहीं, वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन अपनी स्थिति इतनी न बिगाड़ लें कि वो फिर कभी बन ही ना पाए, अपने संबंधों को इतना न बिगाड़ लें कि वो फिर कभी सुधर न पाए। इसलिए अगर आपको ऐसा भी करना है तो स्थिति को साथ रखते हुए या बाबा को साथ रखते हुए करना चाहिए।
जी रता जी, बाबा चार बातें कहते हैं, मैं एक साथ ही कह रहा हूँ, कि आपको देह भान से, देह के सर्व संबंधों से, देह के विनाशी पदार्थों से, और जो बहुत गहरी लगती है मुझे वो ये कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे होना है। अब ये चार चीज़ें बाबा ने कही हैं, कैसे सहज?
निश्चित रूप से बहुत गहरी प्रैक्टिस है, लेकिन ये सब सहज संभव हो जाएगा यदि हम पहली बात को धारण कर लेंगे, देह भान से न्यारे। जैसे जैसे हमारा आत्मिक स्वरूप बढ़ता जाएगा, हम देह से न्यारे होते जाएंगे, देह में रहते देह से न्यारे, तो देह के संबंधियों के साथ रहते हुए, उन्हें प्यार देते हुए, उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए, उनमें जो हमारी आसक्तियां हैं, मोहमत्व है, वो भी बंधन धीरे धीरे टूटता जाएगा। और जब हमें परमात्म सुख मिलने लगता है, बहुत आत्मा ईश्वरीय रसों से तृप्त रहने लगती है, तो ये जो पदार्थ और वैभव हैं ये स्वतः ही ढीले पड़ जाते हैं। मान लो कार है हमारे पास, बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, हमें तो यात्रा ही करनी उसमें, उसकी आसक्तियां खत्म। सबसे बड़ी आसक्ति होती है मनुष्य को भोजन की, स्वाद रस, जिव्या रस। तो जब हमें परमात्म रस मिलने लगता है तो जिव्या रस भी स्वतः ही ढीला हो जाता है, फिर जो कुछ हमें मिलता है उसमें ही हमें रस आने लगता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ-साथ होने लगती हैं, वही संस्कार स्वभाव की बात। उसे न्यारे होने का अर्थ ये है कि हम उसको बदल दें, हम अपने ओरिजिनल जो हमारे मूल संस्कार स्वभाव हैं उसमें आ जाएं। इसके लिए हमें पांच स्वरूपों का अभ्यास, इसको लोग कम समझ रहे हैं, पांच स्वरूपों का अभ्यास कोई छोटा अभ्यास नहीं है।
बाबा ने पिछले सीजन में 2-3 बार इसे रिपीट करा।
अभी आप देखो महाभारत आदि में जो कुछ दिखाते हैं, श्री कृष्ण के चरित्रों में जो कुछ दिखाते हैं, जहाँ कोई शक्ति काम नहीं कर रही, सुदर्शन चक्र निकाला, आह्वान किया और इशारा कर दिया, कर दो ये काम, और उसने कर दिया। कोई भी कार्य, किसी का भी वध, किसी भी बड़े से बड़े असुर का संहार स्वदर्शन चक्र के द्वारा सहज हो गया। तो पांचों स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्र है। यदि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो कैसे भी बुरे संस्कार, कैसी भी बुरी आदत, कैसा भी बुरा पाप कर्म रहा हो, इम्प्योरिटी रही हो, सब नष्ट हो जाएगी। तो ये सब हमें अपनाना होगा।
जी जी, एक बैलेंस की बात बहुतों ने पूछी है व्रता जी, कि न्यारेपन और प्यारेपन एक बैलेंस की ही बात है, तो कुछ सहज युक्ति जिससे ये बैलेंस बना ही रहे, क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आता है, प्रश्न यही है कि जब न्यारे होते हैं तो बिल्कुल ही न्यारे हो जाते हैं, और जब प्यारे होते हैं तो ज़्यादा ही प्यारे हो जाते हैं, फिर न्यारे होने की कोशिश करनी पड़ती है।
बिल्कुल, जन्म जन्म की यही आदत है
जी,
कई न्यारेपन को किनारापन भी समझ लेते हैं, सबसे न्यारे हो जाओ, संन्यास ले,
किसी से बात नहीं,
किसी बात नहीं करो, खाना पीना भी सूखा सड़ा, रह भी कैसे ही लो, बिल्कुल न्यारे हो गए भी हम तो, किससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो मनुष्य को आदत पड़ी हुई है। कई सन्यासी भी रहे होंगे पूर्व जन्मों में, वो भी संस्कार थोड़े काम करते रहते हैं। तो इसमें यह है कि अमृत वेले और 8 बजे तक, मैं कहूँगा 4 से 3.5 से 8 बजे तक, हम अपने को बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रखें, जैसे मैंने कई बातें आपके सामने रखी हैं, दहेज से न्यारा
जी,
पांच स्वरूपों का अभ्यास, परमात्म सुख, ईश्वरीय रस प्राप्त कर लेना, शक्तियां अपने में भर लेना, इस बात से अपने को भरपूर कर देना कि संगम युग पे सभी महान कार्य जो उसके बच्चे कर रहे हैं, करण करावन हार का साथ हमेशा रहता है। तो एक लक्ष्य बना लेना कि मैं और मेरे पन से हमें मुक्त होते चलना है। तो रोज 8 बजे तक हम अपने को बहुत सारी बातों से चार्ज कर लें। हर एक को अपने पास 10-12 ऐसी बातें रखनी चाहिए कि भाई रोज सवेरे मुझे ये सब कर लेना है, चाहे थोड़ा सा व्यक्त बोली पढ़ लेना, चाहे ये स्मृतियां अपने को दिला देना, मेरे साथ भगवान है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पांच स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा अपने मूल संस्कारों को जागृत करना, रोज जगाते जगाते आखिर वो जग जाएंगे फाइनली। तो 8 बजे तक अगर हम ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखेंगे तो क्या होगा, जब हम कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो कम प्रभाव होगा, 10 बजे कोई चला गया तो 12-1 बजे तक उसका समय बहुत अच्छा बीत जाएगा। फिर हम इन चीज़ों को 5-7 मिनट में रिवाइज कर लें, फिर शाम तक का समय थोड़ा अच्छा बीतेगा, थोड़ी मन उसको मानसिक थकान भी होती है, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ा किसी कार्य में, उसमें भी थोड़ी थकान होती है, ये सब है, शरीर भी सबके ऐसे हैं, कोई ना कोई व्याधि भी लगी रहती है, कोई टेंशन आ गई, कामकाज में कहीं असफलता मिली, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सत्य है, अगर हम ईश्वरीय नशे में रहेंगे, अगर हम बहुत लाइट रहेंगे, अगर सारा दिन हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहेंगे, एक एक मिनट भी, तो शाम तक कार्य करने के बाद भी हम बहुत फ्रेश रहेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। फिर घर आकर फिर आजकल हमारे पास बहुत अच्छे साधन है, सुंदर सुंदर गीत बजा लो, 10-15 मिनट 15 मिनट ही बजा लो, उनके जो सुंदर शब्द हैं, क्योंकि एक एक गीत में फिलॉसफी है, गीत केवल मनोरंजन नहीं है, परमात्म प्यार में मगन करने वाले गीत हैं। कई लोग करते हैं, मुझे वही बताते हैं, हम तो ऑफिस से आए कुमार हैं, अब हमें चाय बनानी है, अब हमें कुछ नहाना धोना, अपना आधा घंटा ऑन कर देते हैं यूट्यूब पर, बजते रहते हैं सुंदर गीत और हमारी तो सारी थकान उतर जाती है, तो फिर से जागृति हो जाती है। और ऐसे ही सोने से पहले हर एक साधक को आधा घंटा अवश्य अपने लिए देना चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे
जी
तो बैलेंस आ जाएगा।
बिल्कुल, पूरा ये दिनचर्या आपने बहुत सुंदर बता दी है, मुझे लगता है इसे न्यारापन बहुत सहज होगा। अब आपने गीत की बात कही है, तो कई बार साकार मुरलियों में ये बातें आती हैं, तो प्रश्न आ जाता है व्रता जी, बाबा कहते हैं ये गीत कविताएँ बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम्हारे काम की नहीं है, तो तुम्हें तो बस अशरीरी बनकर बाप को याद करना है।
ऐसा है, मैं इसके बारे में मैं भी सोच रहा था, अभी मुरली में आया था ना 2 दिन पहले,
जी जी,
सुनने वाले जो मुरली सुनेंगे वो जरूर सोचेंगे कि एक और बाबा कह रहा है, ये दूसरी ओर गीतों का भंडार है। तो इसमें सत्यता क्या है वो मैं सबके सामने रख देना चाहता हूँ। बाबा ने ये गीत जो फिल्मों के थे और बहुत अच्छे गीत थे जो अध्यात्म से जोड़ते थे हमें, वो चालू कराई यज्ञ में और आते रहे, जिसको बाबा कहता था मैंने टच करके बनवाए हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर आगे बढ़े, इतने डीप साइलेंस में रहने लगे थे, वो तो ब्रह्मा थे ना, नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण की आत्मा जिसकी महिमा ही महिमा है। तो लास्ट के 2 सालों में बाबा कहते थे अब बाबा को ये सब नहीं चाहिए, अब डीप साइलेंस, तो बाबा ये कहते थे। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं जब उदासी आए कुछ और हो, अच्छे अच्छे गीत बजा लो। तो ये कौन सा समय था, किसको कहा जा रहा था? अब ऐसे भी लोग बैठे जो लगातार गीत बजा रहे हैं, तो बाबा कह गए सब ये बेकार है, ये क्या धंधा कर दिया तुमने भाई, ये मुक्ता का। तो हर चीज का एक बैलेंस होता ही है, लेकिन अब के हमारे गीत तो मैंने कहा ना एक फिलोसोफी से भरे हुए हैं, डीप सीक्रेट्स हैं उनमें, परमात्म प्यार में मगन करने वाले हैं वो गीत। मैं तो ऐसा कहूँगा जैसे सोए हुओं को, मूर्छितों को जगाने वाले हैं वो गीत, तो उनका सहारा लेना कोई गलत नहीं है।
बिल्कुल, अगला प्रश्न व्रता जी कहते हैं कि न्यारा बनने का हमें पुरुषार्थ करना है या न्यारापन एक श्रेष्ठ स्थिति है?
नहीं, पुरुषार्थ से ही स्थिति बनेगी। न्यारापन एक श्रेष्ठ स्थिति तो है ही, नो डाउट, लेकिन पुरुषार्थ उसका करना ही पड़ेगा। पहले देह से न्यारे पन का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ उसके भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास, फिर दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखने के अभ्यास, मित्र संबंधियों को आत्मिक दृष्टि से देखने के अभ्यास, पदार्थ वैभवों में ये भाव के ये सब यूज करने के लिए हैं। ये हमारे कोई परमानेंट साथी नहीं है। अब एक छोटी सी बात आप देख लीजिए, कभी साइकिलें होती थी, साइकिलों में आ सकती, स्कूटर आ गए, साइकिल फेंक दी लोगों ने, स्कूटर में आ सकती, फिर बाइक आ गई, सुंदर सुंदर युवक, वो स्कूटर विस्कूटर बेकार की चीज़ है, छोटे लोगों का है बाइक, फिर कारें, अभी और भी क्या क्या चीजें। तो मनुष्य परिवर्तित होता जाता है ना, हम भी अभ्यास करते चले। तो ये जो पदार्थ हैं, वैभव हैं, ये परिवर्तनशील हैं। हो सकता कोई और अच्छी चीज आ जाए तो ये भी छूट जाए। पहले टेप रिकॉर्ड होती थी, आ क्या था, फिर बड़ी बड़ी सीढ़ियां आ गई, फिर क्या था, फिर और कुछ, अब तो सबके मोबाइल में सब कुछ है। तो चीज़ें छूटती जाती हैं। तो हम ऐसा अभ्यास कर लें कि ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। एक जाएगी, दूसरी आएगी, वो जाएगी, तीसरी आएगी, मिलती रहेंगी, तो अनासक्त भाव आता जाएगा। और कर्मों में भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही स्थिति बनेगी
जाएगी। न्यारापन और प्यारापन सिर्फ ब्राह्मणों का और फरिश्तों का गुण है या देवताई गुण भी है?
देवताओं को कहीं न्यारा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवताओं की एक स्थिति है, आत्मविमानी स्थिति उनकी बनी बनाई है, उनको उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये ब्राह्मणों की और फरिश्तों की है, देवताओं की नहीं
जी।
लेकिन देवताओं के बारे में एक चीज भी है, वो आसक्त नहीं है। देवताओं के पास अथाह धन संपदा है
जी, जी।
अब आप लक्ष्मी को देख लीजिए, बहुत सारे आभूषण हैं, श्री कृष्ण को भी हैं, नारायण को भी हैं, लेकिन लक्ष्मी धन की देवी है, वो उसमें आसक्त नहीं है
जी।
यानी स्पिरिचुअलिटी उनका लाइफ है विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यहाँ कर ली और स्पिरिचुअलिटी से भरे हैं वो, और ये जो भौतिकता उन्हें प्राप्त हुई है वो केवल यूज कर रहे हैं, और इतना अथाह है कि उसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं। जब मनुष्य के पास कमी होती है ना,
तब फिर
या दूसरे के पास अच्छी है, मेरे पास ऐसी है, तो मनुष्य आसक्त होता है। अब माल ही अथाह है, ले जाओ जितना चाहिए, फिर भी भंडारे भरपूर हैं, तो आसक्ति
की इतना अथाह कि वो सतयुग से देते देते कलयुग अंत तक दे रहे हैं,
दे रहे हैं।
प्रदा जी के अगला है, बाबा कहते हैं कि ज्ञान सहित न्यारा बनो, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में भले हम बाहर से अपने आप को न्यारा कर लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं घर परिवार आदि के संकल्प चलते ही रहते हैं, तो इसके लिए क्या करें?
बिल्कुल, जरूरत तो यही है कि ज्ञान युक्त न्यारापन हो। और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, न्यारापन न तो किनारापन है और न सूखापन है। ये नहीं हम सिंपल भोजन खाते हैं और आज हमारे सामने अच्छा भोजन आ गया तो हम उसे नहीं खाएंगे, हम उसे खाएंगे पर अनासक्त भाव से खाएंगे। आज हमें राजाई मिल गई, हम कहेंगे हमें नहीं चाहिए तुम्हारे राजाई, हम तो न्यारे हैं, हम राज करेंगे लेकिन उसमें आसक्त नहीं होंगे। तो हमें ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की प्रैक्टिस अपने पास रखनी चाहिए। मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि सवेरे के समय और घर वापिस आकर, यदि ये 6 घंटे का भी हम अपना प्रोग्राम बना ले, बहुत अच्छा अपने को भरपूर करने का
जी।
तो 6 घंटे का इफेक्ट 10 घंटे पर और पड़ जाएगा, और तब हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान के लिए भी इसलिए सदा कहता हूँ कि रोज की मुरली से पहले आप 2 पॉइंट ले लें और उनको दिन में कई बार याद किया करें। भूलते हों तो लिख लो, पढ़ लिया, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हफ्ता करो ये, फिर 3 पॉइंट ले लो, फिर 5 लो। कभी कभी मुरली में एक ही लहर होती है, वो एक ही काफ़ी होती है। उसकी प्रैक्टिस सारा दिन करते रहना चाहिए, इसमें क्या, बार बार की प्रैक्टिस हमारी स्थिति का निर्माण करती है। बार बार किए जाने वाले सुंदर संकल्प बहुत सुंदर एनर्जी जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, इसलिए उन चीज़ों का इफेक्ट बहुत रहता है। और ये ज्ञान की बातें ऐसी हैं कि अगर हम ऐसा कर लें, मान लो आज हमने दो पॉइंट रखी, भाई आज आत्मा की बात थी और वरदान में अहम रहम बहम ये सब बातें थी, हम उसको ध्यान में रख लें थोड़ा, तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों से हम अपिमुक्त रहेंगे, हमारी स्थिति बनती जाएगी। देखिए, एक है प्रैक्टिस, दूसरी है स्थिति। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी चाहिए और उससे हमारी स्थिति बनती जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बनी हुई स्थिति बिगड़े नहीं, क्योंकि बनती है सालों में, बिगड़ जाती है फट से, गुस्सा आ गया फट से बिगड़ जाएगी, तो फिर डैमेज हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हमें ज्ञान की कुछ बातें अपने पास रोज़ रख लेनी चाहिए और न केवल उनको याद करें बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, तो फिर ज्ञान युक्त न्यारापन होता जाएगा।
जी जी जी, जब सोल कॉन्शियस होकर लोगों से न्यारे होने का पुरुषार्थ करता हूँ तो कहते हैं कि इनकी सीरियस नेचर है, अहंकारी है, ये तो अपने में खोए ही रहते हैं। और जब सबसे प्यार से बात करते हैं, किसी से ज्ञान या सेवा की ही बातें करते हैं, तो हमारी रिपोर्ट हो जाती है कि ये तो बहुत बाह्यमुखी है, लगाव झुकाव में है। तो ऐसे में क्या करें,
दोनों तरफ से मारे गए। चलते फिरते अच्छे स्वमान में अभ्यास करें, और न्यारेपन का अर्थ ही नहीं कि बिल्कुल बात न करें किसी से, और प्यारेपन का भी अर्थ नहीं कि घंटों ही हंसते बहलते रहें। थोड़ा सा गंभीरता, थोड़ी सी प्रैक्टिस बातों को कम करने की, और ये लक्ष्य रखने की कि हम ज़्यादा बाह्यमुखी न हो जाएं, बातों में ज़्यादा न चले जाएं, तो हमें इन चीज़ों से बचाती रहेंगी, तो बैलेंस तो चाहिए।
जी, कर्म बंधन से न्यारे कैसे बने? रते जी, मान लीजिए किसी का लौकिक परिवार का भी होगा, बच्चों का होगा, और पास्ट के भी, इनका कहना है कि पास्ट के भी जो कर्म बंधन है वो भी, और यहाँ पे भी ऑफिस में वर्क आदि करते भी विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, तो ऐसे में फिर न्यारापन कैसे?
निश्चित रूप से कर्म बंधन तो बहुत बड़ी चीज है, जिसके कर्मों का बंधन ज़्यादा है उनको बाधाएँ भी ज़्यादा आती हैं, जिसके पाप कर्मों का बंधन ज़्यादा है उनको विघ्न, असफलताएं, शरीर में बीमारियां, ये सब बहुत आती हैं, और जिनके पुण्य ज़्यादा हैं, आती तो उनको भी हैं, परंतु वो जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसके लिए तो हमें बहुत अच्छा योग अभ्यास अपना करते ही रहना चाहिए, रेगुलरली थोड़ा पावरफुल योग अभ्यास हमें करना चाहिए, और कर्म बहुत पुण्य अब करने चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि सूक्ष्म पाप कर्म अब हमसे न हो। अब मान लो हम सेवाओं के फील्ड में हैं और हम पांच लोग एक साथ हैं, हमारे बोल ऐसे हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी खुशी चली जाती है, उसको इच्छा नहीं होती फिर सेवा करने की, तो ये हमारा सूक्ष्म बंधन बनता जाता है। कोई हमारा साथी है जो बहुत स्वीट है, उससे हमारा ज़्यादा लगाव है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को ज़रा रिजेक्ट करते हैं, ये भी हमारा बंधन बनता जाता है। तो हम इन सूक्ष्म चीज़ों का भी ध्यान दें। पास्ट वालों के लिए हम योग बल अपना बढ़ाएंगे ताकि पास्ट के जो कर्मों के बंधन हमें बांध रखे हैं, बांधा हुआ है बहुतों को। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जो जिसने 10-20 लोगों से कर्ज ले लिया और दिया नहीं है, था उसके पास पर दिया नहीं, अब ये जो बंधन है उसको बांधे रखेगा, वो तो देना पड़ेगा, जब तक वो देगा नहीं ब्याज सहित तब तक वो उससे मुक्त नहीं होगा, भिन्न भिन्न रूप से वो आएगा, उसके पास आएगा हिसाब लेने के लिए। इसलिए हमें नए बंधन न बने, ये बहुत ध्यान रखना है, सूक्ष्म बंधन न बने, मैं और मेरा ये सूक्ष्म बंधन बना देता है, जिसको बाबा कहते थे सोने की जंजीर, तो सेवा भी कहीं कहीं सोने की जंजीर बन जाती है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, मुझे इस चीज़ का अपने पुरुषार्थ में बहुत ध्यान रहा। गीता, क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ता था और गीता का निष्काम कर्म योग मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो उसमें थोड़े थोड़े जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने उदाहरण भी दिए थे, लेकिन फिर मुझे समझ में आया, मान लो हमें किसी सेवा का सुंदर मौका मिला हुआ है, अब हमने 5 साल वो सेवा की है, हमें उसमें आनंद आ रहा है, हमारी उन्नति हो रही है, लोग भी वाह वाह करते हैं, हमें उस नज़र से देखते हैं, भाई इनकी ये सेवा बहुत सुंदर है, अब कल वो हमसे छुड़ा दी जाए, हमारी स्थिति बिगड़ गई, हम लड़ाई कर बैठे, क्यों क्या? तो इसका अर्थ हुआ हम उस श्रेष्ठ कर्म में भी आसक्त थे, यानी वो श्रेष्ठ कर्म भी हमारे लिए बंधन था। इससे मुक्त होने के लिए हमें निमित्त भाव से कार्य करना, और जब दूसरे को मिल रहा है तो परेशान ना होना कि अब भाई ये करेंगे मुझे इससे अच्छा मिलेगा। बस ये संकल्प लोग भूल जाते हैं
जी, जी।
कि अगर ये हमसे छुड़ाया जा रहा है, छुड़ाया भी क्या जा रहा, हम निमित्त थे, ठीक है हम करते थे, अब ये करेगा, लेकिन इससे अच्छा रोल हमें मिलने जा रहा है तो शायद हम बहुत प्रसन्न रहें और कहीं हम आसक्त भी नहीं होंगे। एक छूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा छूटेगा उससे सुंदर तीसरी सेवा आएगी, उससे सुंदर चौथा अच्छा क्रम आएगा, उससे पांच, और ये क्रम बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर हम आसक्त हैं तो हम उसी में रुक गए। अब देखिए मैं कभी कभी सोचा करता हूँ बहुतों में मेरापन बहुत है, ये एरिया मेरा, ये डिपार्टमेंट मेरा, ठीक है मेरा है, तो इसके मेरे के वो बंधन में आ गए हैं, अब इससे वो बाहर नहीं निकल सकते। दूसरे लोग आगे बढ़ के कहाँ निकल जाएंगे, वो वहीं रहेंगे क्योंकि उस मेरे ने उनको बांध लिया है। इस चीज़ को यदि सभी लोग समझ लें तो मेरेपन को छोड़ देंगे, क्योंकि बाबा हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम इस मेरेपन के चक्रव्यूह में, इस बाउंड्री में अपने को बांध के रख लेते हैं, तो बाबा क्या करे, बंधे रहो भाई।
जी जी, बहुत गहन सी बात भ्राता जी आपने कही है, बातें बहुत सारी हैं, मैं केवल सार वाली बातें लेना चाहूँगा। बहुतों का प्रश्न है परिवार के मुँह से न्यारा कैसे बने, जबकि परिवार में रहते उनका प्यारा भी बनना है,
प्यार देना भी है, बच्चों की पालना भी करनी। मैं भी सोचा करता हूँ जब बाबा कहता है ना निर्मोही बनो, मैं माताओं को देखता हूँ, प्रैक्टिकल अपना चिंतन बता रहा हूँ, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, दूध पिलाया, पालना की, उसकी सफाई की, गंदगी धोई, उसको प्यार दिया, पाला, सुलाया, जगाया, तो उससे तो उसका मोह हो ही जाता है, अब उसमें तो वो बसने लगती है, वही उसका संसार बन जाता है, इसमें माताएं बेचारी क्या करें। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी स्थिति की जरूरत है, ये आत्मा है, ये बाबा ने आत्मा फूल हमारे पास भेजा, हमें इसकी संभाल करनी, प्यार भी देना है। और अगर आत्मिक दृष्टि रहेगी, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो ये मोह जो बंधन बना हुआ है वो धीरे धीरे आत्मिक प्यार में बदलता जाएगा, और जब मोह आत्मिक प्यार में बदलता जाएगा तो उससे छूटना भारी नहीं लगेगा। नहीं तो मोह से छूटना माना डिप्रेशन आना। बहुत मैं देखता हूँ माताओं को, जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई और बहू ने कहा माँ बाप तुम्हारे कुछ नहीं लगते, भागो यहाँ से, और उसको लेके चली गई, तो बेचारी माता उदास हो जाती है कि जिस बच्चे के लिए इतना किया उसे मिल भी नहीं सकते, फोन भी नहीं करने देती आजकल की बहुएं। तो अगर इसको आत्मिक प्रेम में बदल दिया जाए तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी।
जी जी, बाबा कहते हैं कि न्यारा और प्यारा अर्थात देह संबंध प्रकृति पदार्थ के बंधन से मुक्त। सच कहूँ तो बीमारी के समय या संबंधों के टकराव में या किसी भी साधन की जीवन में कमी होने से बार बार बुद्धि उजड़ जाती है, क्योंकि बहुत अधिक ना सही परंतु अपनी जगह पर थोड़ी थोड़ी तो सभी चीज़ें चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को न्यारा कैसे करें, क्या न्यारा करना उचित है?
बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए धन भी चाहिए मनुष्य को, व्याधि भी हर एक को आती है, और टकराव भी कहीं ना कहीं होता है। अब बुद्धि उसमें जाएगी। धन के बारे में मैं बहुत बार बाबा की बातें सुनाई सबको, सवेरे उठकर खुले मन से अभ्यास किया करें, मैं इस सृष्टि में बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ, 5 बार किया करें इसी क्रम से। दूसरा, ज्ञान धन का दान किया करें, जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा स्थूल धन सहज मिलेगा। तीसरा, थोड़ा थोड़ा अपना धन बाबा के कार्यों में भी लगाया करें तो बाबा आपके भंडारे भरपूर रखेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, जब मनुष्य का धन बढ़ता है तो वो धन में आसक्त हो जाता है और भगवान को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, कई लोग तो पुण्य कर्म भी भूल जाते हैं, लेकिन इसको नहीं भूलना है। टकराव होता है उससे तो बचना है भाई, टकराव तो मोह से भी ज़्यादा खतरनाक है, माना उधर ही बुद्धि जाएगी, फिर तो अपने को भूल जाएंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे, वही याद रखेगा। जब तक इससे बदला न ले लें योग नहीं लगेगा। तो इसलिए टकराव से स्वयं को स्वयं बचाना है। रही बात बीमारियों की, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, बीमारियों में न्यारापन छोटी चीज नहीं है, क्योंकि शरीर से आत्मा
है, शरीर
चिपकी हुई है ना आत्मा, और शरीर का हर इफेक्ट मन पर जाता है, आत्मा को इफेक्ट करता है। बहुत लंबे समय का देहभंश से न्यारे होने का अभ्यास हमें पीड़ा मुक्त बना देता है। हमने कई महान आत्माओं को देखा, पीड़ा है शरीर में पर उन्हें नहीं है। लोग सोच रहे कैसे सहन कर रहे हो, उनसे पूछा कि हम तो कुछ नहीं सहन कर रहे। तो अगर लंबे समय से अशरीरीपन की प्रैक्टिस है तो व्याधियों के प्रभाव से भी हम मुक्त रहते हैं, ये न्यारापन है। और अगर मान लो पीड़ा हो भी गई थोड़ी बहुत देर, क्योंकि कोई भयानक पीड़ा भी होती है, तो फिर उसके खत्म होते डिटैच अपनी अच्छी स्थिति में। तो तीनों में इस तरह हमें एक सुंदर बैलेंस रखना चाहिए और देह से न्यारे होने की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जी जी, तो इनके प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। कोई लौकिक या अलौकिक बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है तो इस बंधन को समाप्त कर न्यारे कैसे पहले?
देखिए, ये भी हो रहा है संसार में बहुत कुछ। हम न्यारे हों तो लोग पीछे भाग रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान और योग में प्रवीण होंगे तो देखिए, बहुत बड़ी वाइब्रेशंस की कमाल है इस संसार में। एक मुरली अभी हम 9 तारीख को सुनेंगे, उसमें बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही, अगर तुम निर्संकल्प हो, अगर तुम्हारी स्थिति बहुत सुंदर है, तो दूसरा बहुत गंदा व्यक्ति, बड़े बुरे विचारों से व्यक्ति तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे वाइब्रेशंस उसके वाइब्रेशंस को बदल देंगे। बाबा ने तो बोला, एक बहुत कामी व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया है, लेकिन तुम्हारी स्थिति अच्छी है, तुम्हारे वाइब्रेशंस उसको कुछ नहीं करने देंगे। बस ये वाइब्रेशंस हम अपने पावरफुल यदि बना लें, तो दूसरा व्यक्ति जो हमें बंधन में डाल रहा है, जैसा मैंने कहा डाल रहे हैं बहुत लोग
जी जी,
तो भी हम न्यारेपन में रह सकेंगे, उन पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे, अपने शुद्ध वाइब्रेशंस से उनके वाइब्रेशंस को भी बदल सकेंगे।
जी जी, कई बार इसमें आपको ऐसा नहीं लगता प्रताप जी? मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति थोड़ा सा डामाडोल भी होता है कि सही क्या है, मतलब उसको जज करने में, कि यदि कोई निमित्त कुछ कह रहा है या परिवार के बड़े कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे में जज करने में भी कई बार दिक्कत होता है कि ये सही कह रहे हैं या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। तो ऐसे में जो एक बंधन वाली स्थिति है या सही निर्णय वाली स्थिति है, वो थोड़ा सा कैसे हो?
बाबा इसमें हमेशा बताते रहे कि वेरीफाई करा लो, जिसमें आपकी भावना हो, जिसको आप समझदार बुद्धिमान समझते हो, आपके निमित्त टीचर दीदी में आपकी भावना है, वो बुद्धिमान है, वो एक निष्पक्ष निर्णय देती है, उसके पास आप जाओ, नहीं तो बाबा से बातें करो, अच्छा योग अभ्यास करो। ध्यान यही रखना कि कहीं हमारा मन उसमें खींचने न लगे, भटकने न लगे, कहीं हमारी स्थिति बिगड़ न जाए। कहीं कहीं हमें कुछ ऐसी बातों का भी त्याग करना पड़ता है जो है तो ठीक, लेकिन आगे चल के बहुत खराब परिणाम देने वाली है, उन चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है। तो इसमें हर जगह मनुष्य की अपनी बुद्धि ठीक निर्णय ले, ये भी शायद संभव नहीं है। इसलिए हमारे जो ऐसे साथी हैं उनसे विचार विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए।
जी जी, ताकि कुछ पछताना ना पड़े। हाँ। स्वप्न से भी, ये एक बड़ा सा और प्रश्न रहता है जी, कि स्वप्न से भी संपूर्ण न्यारा। स्वप्न में हमेशा घर या सतयुग या बाबा के प्यार में ही खोए रहें, क्या ऐसा संभव है और क्या इसके लिए किया जाए?
इसके लिए ये भी संभव है
जी।
लेकिन स्वप्न क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में हजारों साल से जो मेमोरीज भरी हुई हैं वो जागृत होती हैं। एक और चीज है, मनुष्य की कुछ अतृप्त इच्छाएं रखते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो रही, वो भी स्वप्नों में मनुष्य पूर्ण करता है, चाहे वो विषय विकारों की बातें हों। मान लो एक व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना है लेकिन लोग उसे सिखाने नहीं दे रहे, तो सपने में गाड़ी जरूर चलाएगा। एक व्यक्ति को हायर स्टडी करनी थी लेकिन बीच में छोड़ना पड़ा, उसको ऐसा जरूर दिखेगा एग्जाम दे रहा हूँ और यार ये तो याद तो कुछ भी नहीं है। ये होगा, लेकिन अगर सारा दिन हमारी अच्छी स्थिति रहती है, मेरे पास अनुभव है इसके, शुरू के बहुत हैं, तो ऐसा लगता था नींद में भी योगी कर रहे हैं या किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे हैं। सोने से पहले अगर कोई ये स्थिति चाहता है तो उसे जो गलत चीजें हैं नेट आदि पे उनसे तो मुक्त रहना पड़ेगा। सोने से पहले एक घंटा बिल्कुल अपने को मुक्त कर दो, अच्छे गीत बजाओ, अच्छे अभ्यास करो, मुरलियां पढ़ो, एक सतोप्रधान स्थिति बनाकर सो बाबा को साथ लेकर, फिर ये चीज संभव है।
बहुत सुंदर, क्योंकि नेट देखते देखते ही आजकल कई लोग सोते हैं या ये,
तो फिर तो वही दिखाई देगा।
जी जी, ये बहुत गहरी बात है। एक घंटे पहले तो कम से कम मुक्त हो जाएं उससे,
दिन में भी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। कामकाजी उससे है वो अलग बात है, उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर गंदी चीजें देखते रहना उसका बुरा इफेक्ट पड़े।
जी प्रता जी, आपने शुरुआत में कहा, बस मैं अंत की ओर पहुंच गया हूं, कि आपने बाबा को भी देखा, मम्मा को या हमारी दादियों को, आपने खुद भी इतनी लंबी यात्रा आध्यात्मिक की है यात्रा, तो आपके और इन्हीं जो आपने ऑब्जर्व किया, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे कि ऐसी सिचुएशन थी और बाबा न्यारे और प्यारे रहे या दादियां न्यारी और प्यारी रहें, या आपने स्वयं भी ऐसा अभ्यास किया है जो प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे?
अब वो तो मुझे कितना याद आएगा अभी, क्योंकि पहले आप बता देते तो मैं सोच लेता।
मैं तो आपको पहले कुछ भी नहीं बताता।
बाबा को हमने देखा था कि बाबा बच्चों को शिक्षाएं दे देता था, ये बात तो मुझे ख्याल में रहती है कि मान लो कोई लड़के आ गए बाबा के पास, बाबा उन्हें शिक्षा देता था, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी कर देता था, लेकिन फिर जब दूसरे से मिल रहा उसके बाद तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पहली घटना का। या बाबा के पास कोई पत्र आया है, समाचार आया है, कई समाचार ऐसे थे जिनका दिमाग पर इफेक्ट होता है,
जी जी,
फलाने ने ये कर दिया उस सेंटर में, तो बाबा वो पढ़ लेता था और बाबा के पास ये पावर थी कि लोग मिलने आ गए तो उसका इफेक्ट मिलन पर कुछ भी नहीं। तो ये तो वो तो ब्रह्मा थे और मोस्ट पावरफुल थे, लेकिन दादी प्रकाशमणि को भी हमने इसी स्थिति में देखा, क्योंकि मनुष्य के लिए ये काम थोड़ा कठिन होता है,
और वो भी जब वो रिस्पॉन्सिबल,
हाँ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, कई ऊपर नीचे लोगों ने गड़बड़ कर दी, अब फिर आपको मुरली सुनाने जाना है, तो मुरली में वही रस दादी भी भर देती थी। कई बार हमें पता होता था ये बात चल रही है, लेकिन जब मुरली सुनाने आती थी तो उस बात का नो इफेक्ट। जिन्होंने किया वो भी सामने बैठे हैं लेकिन वहां उस चीज का इफेक्ट नहीं। अब ये भगवान की बात है, उनसे पूछ रही है, हाँ क्या बताया बाबा ने, बताओ। है तुम बड़े होशियार स्टूडेंट हो, बताओ क्या क्या अच्छी बात कही आज बाबा ने। क्योंकि मुरली तब ऐसे होती थी, क्वेश्चन आंसर, दादी दादी तो रस भर देती थी ना। तो ये हम देखते थे, तो सीखते थे कि ये हमें सीखना है, एक घटना का इफेक्ट दूसरी पर नहीं। किसी का कुछ हो गया तो व्यवहार में वो चीज दिखाई न दे।
जी जी, फाइनल क्वेश्चन है प्रता जी, बाबा कहते हैं कि न्यारेपन और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ, तो इसे किस विधि से हम फैलाएं?
बस ऐश्वर्यपन के वाइब्रेशंस, सबके लिए सुभावनाओं के वाइब्रेशन, जैसे ये संसार हमारे लिए है नहीं कुछ क्षणों के लिए, और मैं आत्मा हूं और जा रही हूं वापिस अपने धाम, जिसे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, केवल अपनी प्रैक्टिस मुक्ति, शिव बाबा अपना घर, मुक्ति जीवन मुक्ति, तो ये न्यारापन हो गया ना संसार से, तो इसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। साथ में जो बाबा का कहने का अर्थ है वो ये है कि लोग आसक्त बहुत हो रहे हैं पदार्थों में, सेवाओं में, सेवाओं से जो प्राप्तियां हो रही हैं उनमें, तो तुम एक ऐसा एग्जाम्पल बनो इन चीजों से परे। सेवा कर रहे, समर्पण, धन आ रहा है समर्पण, मान मिल रहा है तेरा, ऐसा एक माहौल बना दो चारों ताकि दूसरी अच्छी आत्माएं इसको फॉलो कर सके।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, बहुत ही गहन विषय है और उतनी ही गहनता से आपने अपने अनुभवों से इसे स्पष्ट किया है। विश्वास रखते हैं कि सभी इसका बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे और अपने आप को न्यारा बनाएंगे। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, बहुत ही प्यारी चर्चा आदरणीय भ्राता जी के साथ हुई है और लगता है कि और भी गहन हो सकती है क्योंकि प्रश्न और भी आपके थे। मुझे लगता है कि इन सार रूप में इन बातों को हम ज़रूर बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अपनी दिनचर्या में इस बात को शामिल करें। और बाबा की दो बातें मुझे और विशेष याद आ रही थीं। बाबा ने दो एम हमें दिए हैं, उनकी को भी अपनी प्रैक्टिस में इस न्यारे प्यारेपन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बाबा ने एक एम दिया कि तुम सब जहाँ कहीं पर भी हो लेकिन अपने आप को मधुबन निवासी समझो। यदि मधुबन निवासी हैं तो ना सेंटर मेरा है, ना घर मेरा है, ना बच्चे मेरे हैं, ना व्यापार मेरा है, मैं तो मधुबन निवासी हूँ, मधुबन मेरा घर है। ये जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है, ये सेवा बाबा ने मुझे दी है। यदि ये भाव है, गहराई से हमने उसे एक्सेप्ट किया है, तो फिर न्यारा होना उनसे बहुत सहज हो जाएगा। ये बाबा के महावाक्य हैं, फर्स्ट टाइम खुद को मधुबन निवासी समझो। और दूसरा एम बाबा ने कहा, खुद को मेहमान समझो। मैं संसार में हूँ, आया हूँ, मेहमान हूँ। और हम सब जानते हैं कि मेहमान बिल्कुल आसक्त नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता, आया है, सब चीज़ों को इंजॉय करता है, आनंद लेता है, सबसे मिलता है, जुलता है, बहलता है, सब चीज़ें, लेकिन उसकी स्मृति में है मेहमान हूँ, आज हूँ कल जाना है। हम सब भी आज हैं, कल जाना है। तो इन दोनों एम पे भी बहुत गहराई से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से न्यारे होते चलेंगे और बाबा के समान प्यारे होते चलेंगे। हमें तो बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को अपने जीवन में लाके हमें बाबा का प्यारा, विश्व का प्यारा बनना है। लेकिन उसके लिए सुंदर धारणा, न्यारे, देह से भी न्यारे, पदार्थों से भी न्यारे, संबंधों से भी न्यारे और अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारे। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी को कि बाबा की ये जो सुंदर हम सब के लिए प्रेरणा है, आश है कि जैसे मैं आता हूँ चला जाता हूँ, जैसे मैं न्यारा हूँ मेरे बच्चे भी न्यारे बने, तो हम सब मिलकर फॉलो फादर करें। ओम शांति। चलें प्यारे बाबा की स्मृति में हम सब दो मिनट बैठे।